मेरे प्रिय युवा साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं हिंदुत्व, इस पर आप सबसे कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। रेडियो न्यूज में आपने खबर सुनी होगी चक्रवात फ्रेडी को लेकर, चक्रवात फ्रेडी, राइट। अखबारों में देखिएगा कि मालावी और मोजाम्बिक कहां है, इसलिए क्योंकि ये जो चक्रवात फ्रेडी है वो मालावी और मोजाम्बिक में ही आया, या यूं कह लीजिए कि यहां उसने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। प्री एग्जामिनेशन में कभी कभी चक्रवातों के नामों को लेकर के पूछ लिया जाता है जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। मैं जानबूझ करके मैप की बात कर रहा हूं, इसी बहाने आप मैप देखेंगे, थोड़ी देर के लिए उसकी यात्रा करेंगे और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके ज्योग्राफी के प्रिपरेशन में पड़ता है। दोस्तों, प्लीज जरूर ऐसा करें। न्यूज में आपने यह भी सुना होगा कि जो शंघाई सहयोग संगठन है उसका नई दिल्ली में एक सम्मेलन हो रहा है। उस सम्मेलन किस विषय पर है, इसे ध्यान से सुनिए। उस सम्मेलन है साझा बौद्ध विरासत पर, साझा बौद्ध विरासत, बौद्ध विरासत, इस पर यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि चूंकि इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है तो जो बौद्ध धर्म वाला जो टॉपिक है इस बार के मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, और यहां तक कि प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है। डेफिनेटली जब इस तरह के सम्मेलन होते हैं, और चूंकि ये शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा आयोजित है तो अपने आप में बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये संगठन वैश्विक स्तर पर स्थापित और सम्मानित संगठन है और भारत में हो रहा है। बौद्ध धर्म कि जो जन्म स्थली है वो भारत रही है, और आपको यह भी मालूम है, इतिहास में आपने पढ़ा है कि किस तरीके से बाद में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ है उन देशों के साथ भारत के कितने निकट के संबंध हैं। और डेफिनेटली एक ऐसे समय में जब अभी जो दुनिया की जो स्थिति है, बौद्ध सम्मेलन अगर भारत में हो रहा है तो इससे भारत को दूसरे देशों के साथ अपने संबंध और बेहतर बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि धीरे धीरे आप देखिए कि दुनिया जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, दुनिया भर की जटिलताओं और समस्याओं में उलझती चली जा रही है, जो भारतीय दर्शन है, जो फिलॉसफी है, चाहे वो जीवन दर्शन हो प्राकृतिक वातावरण के संदर्भ में ले लीजिए, चाहे वो राजनैतिक दर्शन हो, गौतम बुद्ध के संदर्भ में आप ले सकते हैं जो विश्व शांति की बात करते हैं, जैन धर्म को ले लीजिए जो अहिंसा की बात करते हैं, ये सब कितने प्रासंगिक होते चले जा रहे हैं। और इन सब के मिश्रण के रूप में फिर हमारे सामने एक राजनीतिक व्यक्तित्व उभरा, महात्मा गांधी, जो इन सब को लेकर के चलता है, वो कितने प्रासंगिक होते जा रहे हैं। इसकी चर्चा मैंने इसलिए की है कि इस टॉपिक पर इस दृष्टि से भी आपको थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से और साथ ही साथ निबंध की दृष्टि से मुझे यह विषय बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ रहा है। और जैसे जैसे ये सम्मेलन आगे बढ़ता चला जाएगा तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस पर एडिटोरियल कमेंट्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे और साथ ही साथ एडिटोरियल आर्टिकल्स भी। मैं तो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ही, लेकिन आप भी अपनी ओर से सतर्क रहिएगा। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वो होमवर्क किया होगा, आपने मेरे विश्वास को तोड़ा नहीं होगा। जो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल था उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण बातें थीं, हो सकता है कि आपने उन बातों को पकड़ा हो। पहली बात जो न्यायालय ने कही वो ये है कि जब भी मतदान होते हैं तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। अब इसका चुनाव आयोग से क्या संबंध है? इसका चुनाव आयोग से संबंध इस रूप में है कि जो मतदाता है, अब कैंडिडेट खड़े हैं तो कैंडिडेट तो सभी अपने अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी अपनी अच्छी बातों के बारे में बताएंगे, अपनी पार्टी के सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, लेकिन सच्चाई क्या है? ये सच्चाई बकायदे जो चुनाव आयोग है उसके पास होती है। तो सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग का ये दायित्व तो बनता है कि ये जो कैंडिडेट खड़े हैं उनके बारे में सही सही सूचना अपने मतदाताओं तक पहुंचाए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो चुनाव की स्वतंत्रता से जुड़ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है दोस्तों, उधर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये, अभी तक अगर मैं आपसे पूछूं कि कानून बनाना किसका अधिकार है, तो आप कहेंगे संसद का अधिकार है। संसद का अधिकार है मतलब विधायिका का अधिकार है, हम सब यही मान करके चलते हैं। पॉलिटिकल साइंस की किताबों में, कॉन्स्टिट्यूशन की किताबों में हम यही पढ़ते हैं, पढ़ाया भी जाता है। लेकिन कोर्ट ने एक बात कही है, और वो ये कि कानून बनाना पूरी तरह विधायिका का क्षेत्र नहीं है। समय समय पर दुनिया भर की संवैधानिक अदालतों ने कानून बनाए हैं और नए अधिकारों का सृजन किया है। आप देखिए कि न्यायालय क्या कह रहा है। केवल भारत की बात नहीं है, बल्कि दुनिया भर के जो संवैधानिक अदालतें रही हैं, उन्होंने ऐसा किया है कि नए कानून बनाए हैं और बकायदे जो जनता है, जो नागरिक है, उनके अधिकारों की रक्षा की है, उनके अधिकार उन्हें दिलाए गए हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? मुझे नहीं मालूम कि आप इससे सहमत हैं या नहीं, या होंगे या नहीं, लेकिन पिछले साल मुख्य परीक्षा में जो एक प्रश्न पूछा गया था जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर में, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये जो प्रश्न है, इसे अभी जो बात मैंने कही है उसे मैच करके देखिए, आपको शायद एक नई दृष्टि दिखाई दे। एक प्रश्न पूछा गया है, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है। सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिए, 150 शब्द। बेहतर होगा कि मैं इंग्लिश में भी जरा पढ़कर सुना देता हूं, क्योंकि बहुत से आप में से ऐसे श्रोता हैं जो इंग्लिश मीडियम लेकर की तैयारी कर रहे हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉज। 150 वर्ड्स। आप देख रहे हैं, कायदे सुप्रीम कोर्ट भी कानून बनाती है। क्या आप बिल्कुल करंट की किसी घटना से इसे जोड़ सकते हैं? आपने अभी अखबारों में पढ़ा है, और यह मामला संविधान पीठ को सौंप दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, कि समान लिंग वाले व्यक्ति आपस में विवाह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अपना जो वक्तव्य है वो दे दिया है सुप्रीम कोर्ट को कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस विवाह के पीछे परिवार की अवधारणा है और यह भारतीय परंपरा के खिलाफ है। राइट? अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को बकायदे संविधान पीठ को सौंप दिया है। अब न्यायालय इस पर विचार करेगी, और न्यायालय विचार करने के बाद मान लीजिए कि कहता है कि नहीं, ऐसा किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से देशों में ऐसा है, 30 देश तो लगभग इसे स्वीकार कर चुके हैं, और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार की व्याख्या की गई उसमें यह कि किसी भी व्यक्ति को अपने पसंद से किसे विवाह करने का अधिकार है, तो मामला इतना आसान तो नहीं है कि सरकार की बात मान ही ली जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे इसकी व्याख्या करता है हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहां किस प्रकार से केवल विधायिका ही कानून नहीं बना रही है एकमात्र, बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कानून बना रहा है। इसीलिए कल मैंने आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल प्रोवाइड किया था। दोस्तों, ये जो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें आपस में आपको एक संबद्धता तो दिखाई दे रही होगी, बावजूद इसके इनमें जटिलताएं भी हैं। अब देख रहे हैं कि कहां कहां की चीजें कैसे कैसे जुड़ रही हैं, लेकिन आपको यह भी तो लग रहा होगा कि जब अलग अलग जगह की चीजों को इस तरीके से एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है, तो चीजें आपको ज्यादा चमकदार नजर आ रही होंगी, ज्यादा तार्किक नजर आ रही होंगी, ज्यादा प्रभावशाली लग रही होंगी। क्या ऐसा नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या आपको फिर यह फैसला नहीं करना चाहिए कि नहीं, मुझे भी सिविल सर्विस की अपनी तैयारी कुछ इसी पैटर्न पर करनी चाहिए? मैं सभी टॉपिक के बारे में यह बात नहीं कह रहा हूं, नॉट एट ऑल। मैं कुछ टॉपिक्स के बारे में यह बात कह रहा हूं, और वे कुछ टॉपिक्स कौन से होंगे? वे कुछ टॉपिक्स वे होंगे जिनके एग्जामिनेशन में पूछे जाने की अपेक्षाकृत ज्यादा संभावनाएं होंगी, बस दैट्स ऑल। सभी की तैयारी ऐसी की भी नहीं जा सकती, और सच पूछे तो उसकी जरूरत भी नहीं है। हम कुछ का चयन करते हैं, और कुछ का चयन करने की क्षमता धीरे धीरे आप में आ जाएगी यदि आपने अभी तैयारी शुरू की होगी तो, और यदि आप 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप मैच्योरिटी के उस लेवल तक डेफिनेटली पहुंच गए होंगे जहां आप अपनी तरफ से चयन कर सकें कि मेरे लिए कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन सा बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है और कौन सा बहुत महत्वपूर्ण है। तीन कैटेगरी होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण। अभी मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी की बात है। जो महत्वपूर्ण में आते हैं उन्हें आप थोड़ा विशेष समय दे देते हैं, इतनी जटिलताओं के साथ तैयारी नहीं करते, थोड़ा सा ज्यादा दे देते हैं समय, थोड़ा सा ज्यादा जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं उन्हें थोड़ी गंभीरता के साथ ले लेते हैं, इतनी गंभीरता के साथ नहीं जितना आप बहुत महत्वपूर्ण के लिए लेंगे, और जो आपको महत्वपूर्ण नहीं लगते आप उन्हें छोड़ते नहीं हैं, सामान्य रूप से उस पर एक निगाह मार लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत मायने रखती है, घटनाओं की कंटिन्यूटी होनी ही चाहिए। और ये जो घटना है ये आपके लिए एक तथ्य है, एक फैक्ट है। इस फैक्ट का इस्तेमाल अगर आपके दिमाग में बातें रहेंगी तो पता नहीं आप कहां कर लें, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा बस देख करके मन ही मन एक आध बार अपने दिमाग में दोहरा करके और छोड़ दीजिए, जरूरत पड़ने पर वो आपके मदद करने के लिए हाजिर हो जाएंगे, बस दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि तैयारी करने का यह पैटर्न होना ही चाहिए। तो दोस्तों, चूंकि अब वक्त हो चला है तो इसीलिए मैं आज का जो मुख्य विषय था हिंदुत्व का अर्थ, इसे कल के लिए स्थगित करता हूं। कल हम लोग इस विषय पर बातें करेंगे। तो आज के मुख्य विषय के रूप में आप कुछ खबरों को ले लें। मुख्य विषय के बारे में बस अब इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं, दीक्षा मेघवाल उदयपुर से, छोटू कुमार, प्रियांशी भारद्वाज अलवर राजस्थान से और विजय शेरावत जयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।